समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, अभिवादन स्वीकार कीजिए सरफिरोजी का न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। प्रोग्राम के आज के अंक में भी होंगे देश दुनिया के समाचार, आपको बताएंगे मौसम का हाल और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी और जानेंगे कि आज का दिन खास क्यों है। उन विशेष हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। आज सवेरे के आज के अंक में मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार सरफिरोजी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टुडे इज 6th of January 2026 एंड अ वेरी हैप्पी ट्यूजडे टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, वी गारंटी टिल 8 o'clock, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वी हैव अ लॉट in store for all of you. So let's just begin our program with the news headlines, shall we?
Bilkul Tanvi.
The Election Commission of India (ECI) will publish the draft voter list for Uttar Pradesh today following the ongoing SIR process. The draft electoral roll was initially scheduled for publication on 31st of December. Chief Electoral Officer of Uttar Pradesh, Mr. Navdeep Rinwa, has informed that the period for receiving claims and objections has been set from 6th of January to 6th of February 2026. From 6th of January to 27th of February 2026, during the notice phase, the decision on the claims and objections will be resolved. The final publication of the electoral roll of Uttar Pradesh will be done on March 6, 2026. And in Uttar Pradesh, the state government has decided to establish state-of-the-art digital libraries in Gram Panchayat secretaries with a target to complete the procurement of IT equipment in all districts by 30th of January. Efforts are underway to complete the procurement of furniture for these libraries by 26th of January, after which the digital libraries will be fully ready for operation.
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका शीर्षक के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए सहयोगात्मक, नवोन्मेषी और सतत रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित 41 साहित्यिक कृतियों का विमोचन करेंगे। ये कृतियां केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत विकसित की गई हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा प्रकाशित 13 पुस्तकों के साथ साथ तिरुक्कुरल की 45 एपिसोड की सांकेतिक भाषा व्याख्या श्रृंखला का भी विमोचन किया जाएगा।
The Supreme Court has directed the central government and the Employees Provident Fund Organization, EPFO, to decide within 4 months on revising the wage ceiling under the Employees Provident Fund scheme, that is EPFS, which has remained unchanged for the past 11 years. A bench of Justices J.K. Maheshwari and Atul S. Chandurkar passed the directions while hearing a public interest litigation, highlighting that the stagnant wage ceiling has resulted in a large section of workers being excluded from the ambit of the EPFO, a social welfare scheme intended to provide social security to employees in the organized sector.
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मर्ज का स्वागत करेंगे। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा से उच्चतम राजनीतिक स्तर पर नियमित बातचीत से और मजबूती मिलेगी।
प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप platform for proactive governance and timely implementation, Pragati has marked a significant milestone with the successful conduct of its 50th meeting. Since its launch by Prime Minister Narendra Modi in 2015, Pragati has transformed governance by enabling real-time monitoring and resolution of key infrastructure projects and also public grievances through direct prime ministerial review. The platform exemplifies cooperative federalism, bringing together the centre, states and union ministries on a single digital interface. Over a decade, Pragati has helped accelerate decision-making, resolution of issues causing delay in key infrastructure projects, and instilled a strong culture of accountability. It has also emerged as a platform for governance reforms, not merely monitoring. Today, in this special series, we take a look at Mission Amrit Sarovar, which aims to construct and rejuvenate water bodies across the country.
The Mission Amrit Sarovar, launched in 2022, is a flagship initiative to construct and rejuvenate 75 water bodies in each district across the country. Each Amrit Sarovar is designed to have a pondage area of minimum of 1 acre with a water holding capacity of about 10,000 cubic meters. The progress of Mission Amrit Sarovar was regularly reviewed at the national level through Pragati, bringing together senior officials from central ministries, state governments and district administrations on a single digital platform. This has enabled faster decision-making and effective resolution of issues such as land availability, interdepartmental coordination and release of funds. Joint Secretary in the Department of Rural Development, Rohini Bhaji Bhakre, said that reviews of projects through Pragati by Prime Minister Narendra Modi significantly strengthen coordination among all ministries.
Prime Minister always lays emphasis on the role of the government as well as the role of the nation. So according to that, more than 68,000 Amrit Sarovars have been made in the country. Also, the reviews of the projects through Pragati by Prime Minister significantly strengthens coordination among all the ministries.
Under the scheme, the target was to construct 50,000 Amrit Sarovars by 15th August 2023. However, due to rapid progress following Pragati intervention, the work gained significant momentum and over 68,800 Amrit Sarovars have been completed so far across the country. The mission has made a significant contribution to addressing water scarcity and has played an important role in enhancing both surface and groundwater availability in various regions. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
Iran is witnessing its most serious wave of unrest in 3 years as nationwide protests entered the 10th day on Tuesday, January the 6th. Security forces have tightened their presence across major cities, even as US President Donald Trump warned that he could side with demonstrators if violence escalates. The protests were triggered by the sharp collapse of the Iranian rial and surging inflation and have spread from Tehran's Grand Bazaar to more than 220 locations across at least 78 cities in up to 31 provinces. Human rights groups say at least 16 to 20 people have been killed and several hundreds detained. Crowds have been chanting anti-government slogans and targeting symbols of state authority, making this the broadcast wave of unrest since the 2022-23 protests following the death of Mahsa Amini.
और अब रुख कर लेते हैं खेल की ओर. बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज क्वालालंपुर के स्टेडियम एक्सियाटा एरिना में आयोजित मलेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलेंगी. महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़ और उन्नति हुडा भी नजर आएंगी. पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भाग लेंगे, जबकि पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी भारत की ओर से मजबूती से खड़े रहेंगे. श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों का हाल. शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई से. तन्वी,
Absolutely. The Greater Chennai Corporation is gearing up to give an eco-friendly facelift in the phase 2 of the redevelopment of Marina Beach. The first phase of redevelopment was carried out by the civic body behind the swimming pool at a cost of 7.31 crore rupees and was inaugurated in August last year. The phase 2 of the redevelopment is coming up opposite Vivekanand House at an estimated cost of 6 crore rupees and the work began last week. To attract more visitors, bamboo selfie points, meditation and reading rooms and 2 vending machines to collect plastic bottles will be set up.
और अब ले चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली की ओर. दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आरबीआई दिल्ली सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करेगा. बयान में कहा गया है कि यह समझौता ज्ञापन राज्य विकास ऋणों के माध्यम से बाजार से ऋण लेने, अधिशेष नकदी के स्वचालित निवेश, पेशेवर नकदी प्रबंधन और कम लागत वाली तरलता सुविधाओं तक पहुंच को सुगम बनाएगा. और बेंगलुरु से क्या खबर है तन्वी?
Yes, Bengaluru. About Bengaluru, Karnataka Governor Thavarchand Gehlot addressed the 106th annual convocation of the University of Mysore yesterday. He emphasized on developing an education system that integrates modern knowledge with strong values for preserving national unity, harmony and cultural integrity. He further added that an education system rooted in values along with modern knowledge helps safeguard religion and culture, strengthen national unity and integrity, foster social harmony and provide a positive direction to the world while also benefiting humanity as a whole. He pointed out that the National Education Policy, NEP 2020, is a significant step towards this direction and he underlined the crucial role of youth in the nation building.
और अब बात कर रहे हैं मुंबई की. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर मुंबई के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 6 उन्नत कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है. एक बयान के अनुसार एक केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी कौशल विकास केंद्र कांदीवली पूर्व में पहले से ही कार्यरत है. इन पहलों से 14 महीनों में 35,000 से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है. तन्वी, मुंबई से एक और खबर है. थाड़े नगर निगम चुनाव से पहले मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने मताधिकार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के माध्यम से मतदाता एक क्लिक में मतदान केंद्र का पता, ईपीआईसी नंबर, मतदान की तारीख और समय जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
And about Hyderabad, the Indian Army will conduct a recruitment rally covering enrollment across multiple Agni Veer categories under the unit headquarters quota at the Army Ordnance Corps Centre in Secunderabad from 2nd of February. It will continue till 10th of May. Further details can be obtained from the AOC Centre headquarters in Secunderabad. The rally will include recruitment for Agni Veer General Duty, Clerk or Storekeeper Technical Tradesman in trades and like Chef, Artisan Miscellaneous Works, Steward, Support Staff, Dresser and Washerman as well as Outstanding Sportsman and Technical Tradesman under the Open category. Candidates applying under the Sportsman category have to report by 6 a.m. on 2nd of February for trials, while candidates for the Musician category must report by 6 a.m. on 4th of February for the Aptitude Test.
और एक आखिरी महानगर की बात कर लेते हैं. बात कर रहे हैं कोलकाता की. राज्य सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा डब्ल्यूबीपीएस के 26 अधिकारियों को पुलिस बल के विभिन्न विभागों में नए पदों पर स्थानांतरित किया है. प्रशासनिक और खुफिया कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष रूप से हावड़ा और विधाननगर आयुक्तों के केंद्रीय मुख्यालय और यातायात प्रभागों में उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं. तो श्रोताओं, अभी हमने आपको बताया महानगरों का हाल, अब आपको देते चल रहे हैं महानगरों के मौसम की भी जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की बात करें तो हल्का कोहरा छाए रहने का आज यहां अनुमान है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धुंध रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी सुबह के समय हल्की धुंध रहेगी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तन्वी, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
Yes, let's talk about Chennai and Hyderabad together because both had fog or mist in the morning and will have partly cloudy sky later. If we talk about the temperature about Chennai, the minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. And for Hyderabad, the temperature will hover somewhere between a minimum of 15 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius. About Bangalore, it's expected to have mist. The minimum temperature was 15 degrees and maximum will be around 27 degrees.
और तन्वी, अब कार्यक्रम का वो हिस्सा आ चुका है जहां हम इतिहास की किताब को खोलते हैं और पिछले पन्नों को पलटते हैं, जानते हैं कि आज यानी 6 जनवरी का दिन खास क्यों है।
Yes, so let's begin with 1838. What exactly happened on this particular year? Let's talk about that.
जी बिल्कुल तन्वी, आज ही के दिन सैमुअल मोर्से पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ तकनीक को लेकर आए, जो भविष्य में दूर संचार का आधार साबित हुआ। 1664 में आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया।
एंड इन 1912 अल्फ्रेड वेगनर प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ऑल्सो न्यू मेक्सिको ऑफिशियली बिकेम द 47th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
और 1918 में आज ही के दिन जर्मनी ने फिनलैंड की स्वतंत्रता को मान्यता दी।
इन 1946 द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन वियतनाम वर हेल्ड एंड इन द ईयर 1970 द Wiener Music Wieren was inaugurated. The famous concert hall is the home of Vienna Philharmonic Orchestra.
और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे उन खास हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। सबसे पहले बात कर रहे हैं सुरों के बादशाह A.R. रहमान की, जिनका आज जन्मदिन है। आज ही के दिन 1966 में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। हिंदी के अलावा कई भाषाओं की फिल्मों में भी इन्होंने संगीत दिया है। रहमान ने अपने शुरुआती करियर में कुछ टीवी विज्ञापन और धारावाहिकों में अपने संगीत को जिंगल्स के रूप में दिया। इन्हें सबसे बड़ी कामयाबी मिली साल 1992 में, तब जब सुप्रसिद्ध निर्देशक मणि रत्नम ने इन्हें अपनी फिल्म रोजा का संगीत देने की पेशकश की। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। इसी फिल्म के लिए इन्हें उस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां ऐ मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई।
तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियां, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियां। तेरे रामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन।
तन्वी, एक और गीत भी है A.R. रहमान का सुन लेते हैं, जिनके लिए उन्हें ऑस्कर प्राप्त हुआ।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले हैं।
ज जी श्रोताओं, एआर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल हुए। इस फिल्म के गीत जय हो के लिए जो अभी अभी हमने सुना, उन्हें सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुए।
And today is the death anniversary of Louis Braille, a French educator and the inventor of a reading and writing system named after him. Braille intended for use by visually impaired people. His system is used worldwide and remains virtually unchanged till this date. Louis Braille was blinded in one eye at the age of 3, and this happened at his father's harness making shop, and an infection set in and it was spread to both the eyes, resulting in total blindness. But he was very educated. He had an interest in education, so he went to the school. He went to France's Royal Institute for Blind Youth, and while still a student there, he began developing a system of tactile code that could allow blind people to read and write quickly and efficiently. In adulthood, Braille served as a professor at the institute and had an avocation as a musician, but he largely spent the remainder of his life refining and extending his system. It went unused by most educators for many years after his death, but posterity has recognized Louis Braille as a revolutionary invention, and it has been adapted for use in languages worldwide.
आज मशहूर नाटककार और सिनेमा टेलीविजन की दुनिया के पटकथा लेखक विजय तेंदुलकर की भी जयंती है। साहित्य की दुनिया में विजय तेंदुलकर की कलम बड़े बड़े कलमकारों की बोलती बंद कर देती है। इन्होंने अपनी कलम से लीक से हटकर ऐसी रचनाएं लिख डाली जो सदा के लिए अमर हो गई। विजय का जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। विजय ऐसे लेखक थे जिन्होंने मराठी थिएटर को नई ऊंचाइयां दी। कहा जाता है कि उनके बहुचर्चित नाटक घासीराम कोतवाल का 6000 से ज्यादा बार मंचन हो चुका है। 1961 में इनका लिखा हुआ नाटक गिद्ध खासा विवादास्पद रहा। ढाईपन ने सन्नाटा, कोर्ट चालुआ है, घासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर के कुछ मशहूर नाटक हैं।
And today is also the death anniversary of Sadhguru Tyagaraj Swami, a composer of the Carnatic music, a form of Indian classical music. So let's just enjoy one of his beautiful compositions before we move further. Tyagaraj and his contemporaries Shyam Shastri and Muthuswami Dikshitar are regarded as the trinity of Carnatic music. Tyagaraj composed hundreds of devotional kritis, mostly in Telugu and in praise of Lord Ram. Many of them remain popular till this date. Of special mention are 5 of his compositions called the Pancharatna kritis, which are often sung in programs held in his honor. He composed many Utsav Sampradha kritis meant to be sung in temple rituals or festivities, and Divya Naam Sanskirtan sung as a part of concerts and daily life.
आज भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाले हरफन मौला खिलाड़ी क्रिकेटर कपिल देव का भी जन्मदिन है। कपिल देव ने सन 1975 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश लिया। कपिल देव ने 20 वर्ष की उम्र में ही 1000 रन बनाने तथा 100 विकेट लेने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वे विजडेन द्वारा वर्ष 2002 में सदी के भारतीय क्रिकेटर चुने गए। अपनी आत्मकथा बाय गॉड्स डिग्री में भी उन्होंने क्रिकेट के कई गुण सीखे। हम आपको उनके एक इंटरव्यू का छोटा सा अंश सुना रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे वो खुद क्रिकेट की ट्रेनिंग लिया करते थे।
You have to have a disciplined life. You have to say कि I'm a fast bowler or swing bowler. ये मेरी रजीम होनी चाहिए, इस तरह मुझे काम करना है। अगर आप उस काम को अपने दायरे से करेंगे तो आपको इंजरीज कम होने के चांसेस हैं। लेकिन आप बिना सोचे समझे आप करते जाएंगे तो इंजरीज होने के चांसेस भी कम है। सो मैं नहीं जानता कि आज के बच्चे किस तरह प्लानिंग करते हैं। हमारे समय में होता था कि ऑफ सीजन में हम ट्रेनिंग डबल करते थे कि अभी ट्रेनिंग करने का टाइम है जब मैचेस नहीं है। اور جب میچز ہوتے تھے تھوڑا سا ٹریننگ کم کر دیتے تھے کیونکہ ہر روز ہمیں اتنی بالنگ اور اتنی بیٹنگ کرنی ہے. یہ میرے کو اپنے دیش کے بچوں کی ہیلپ کرتے ہوئے مجھے کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ سوچتے ہیں کہ ان کو مجھ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو مجھے کوئی اس میں آپتی نہیں ہے کسی کو سکھاتے ہوئے.
And today we are remembering Om Puri. It's his death anniversary. An Indian actor who appeared in mainstream commercial Hindi films as well as Urdu, Malayalam, Bengali, Kannada, English, Punjabi, Gujarati, Telugu and Marathi films as well as independent and art films and also starred in several international cinema. He is widely regarded as one of the finest actors in world cinema. He won 2 National Film Awards for Best Actor, 2 Filmfare Awards, India's 4th highest civilian award, that is Padma Shri, in 1990, and in 2004 he was made an honorary officer of the Order of the British Empire. I'm sure all the listeners, you must have seen some of the other movie by him, be it Akrosh, Arohan, Ardh Satya, Tamas, Chachi 420, Jaane Bhi Do Yaaro, Hera Feri and many more. So let's hear one of his dialogues from Hera Feri where he played a comedy character and made everyone laugh.
آپ کی تعریف
کھڑک سنگھ.
اور کھڑک سنگھ, کھڑک سنگھ تو میں ہوں, تو کدھر کا کھڑک سنگھ؟ اور کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں.
نہیں نہیں, کھڑک سنگھ تو آپ ہیں, ہم تینوں تو شام کے دوست ہیں.
تینوں کی شکل ملتی ہے, جڑوا ہو؟
نہیں, ہم تینوں توڑوا ہے.
اور ٹھیک ہے, پہلے جڑواں تھے پھر تڑکے ہیں.
ہاں برابر.
ہاں اس کو بلاؤ کل شام کو, بولو کھڑک سنگھ آیا پہ لینے. آج اگر مجھے پہ نہیں ملے تو جتنی گولیاں اس بندوق کے اندر سب کی سب اتار دوں گا اپنی کھوپڑی میں.
وہ شام تو نکل گیا.
نکل گیا کہاں؟ نکل گیا,
وہ آپ کے گاؤں گیا پیسے دینے.
اور پر اس نے تو آج مجھے یہاں بلایا تھا.
ہاں لیکن اس کو کل رات کو ہی پیسے مل گئے تو وہ کل رات کو ہی گاؤں چلا گیا.
تو پھر میں گاؤں بھاگتا ہوں, نہیں تو پھر اسے کوئی بہانہ مل جائے گا.
प्रोतुल चंद्र सरकार की आज पुण्यतिथि है. ये भारत के प्रसिद्ध जादूगर थे. इन्हें पीसी सरकार के नाम से जाना जाता है. भारत सरकार ने वर्ष 1964 में पीसी सरकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया. जादूगर के क्षेत्र से जुड़ी पत्रिकाएं और अखबार उनके नाम से उनके काम की सकारात्मक समीक्षाओं से भरे होते थे. इनमें शानदार तस्वीरों और पोस्टरों की भरमार हुआ करती थी. पीसी सरकार को उनके इंद्रजाल या द मैजिक ऑफ इंडिया शो के लिए जाना जाता है, जिसे 1955 में पेरिस में आयोजित किया गया था.
Today is also the death anniversary of Dilip Kumar Roy, an Indian musician, singer, musicologist, novelist, poet, essayist and yogi. 1965, the Sangeet Natak Academy, India's National Academy for Music, Dance and Drama, awarded him its highest honor for lifetime achievement. And let's hear one of the patriotic songs that he composed in the early 1950s, which is a part of the official list of marching songs for the Indian Army, adopted by nobody else but Field Marshal General K.M. Kariyappa.
Satkara havar zuvka dara, sarai juke na paav ruke na, aadhi ban kar chhaye hum. Sarai juke na paav ruke na, aadhi ban kar chhaye hum. Badhe chalenge, badhe chalenge, maut se bhi lad jaye hum.
آج نائب صوبیدار بانا سنگھ کا جنم دن ہے. سن 1987 میں صوبیدار بانا سنگھ کو پرم ویر چکر سے سمانت کیا گیا. جون 1987 میں نائب صوبیدار سنگھ کو سیاچین میں 21,153 فیٹ کی اونچائی پر برف کے ایک وشال ڈھیر پر استھت قائد پوسٹ پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. اس دوران انہوں نے پاکستانی سینکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے ہی لیے انہیں بھارت کے سروچ ویرتا پدک پرم ویر چکر سے سمانت کیا گیا.
Former world billiards champion Manoj Kothari died yesterday at the age of 67 following a massive cardiac arrest at the hospital in Thirunelveli in Tamil Nadu. Kothari had won the world billiards championship title back in 1990 and he also secured the state championship title a total of 16 times during his career. Apart from that, today is the birthday of Rowan Atkinson, an English actor, comedian and writer. I'm sure you know him by the character and the name Mr. Bean. So we have a short interview by him. Let's just hear that.
Anyway, I was standing around with a group of guys and I could see this guy doing that. And he came up to me after a while and he said, excuse me, has anyone ever told you that you're the absolute spitting image of that Mr. Bean? And I said, well, actually, I am the actor who plays Mr. Bean. And he said, hi.
It's also the birth anniversary of Bharat Vyas, a noted Indian lyricist who wrote the songs for Hindi films in 1950s and 1960s. Let's hear a prayer written by him, which I believe every Indian school-going child has recited at least once in their lifetime.
अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का. सरफिरोजी और तन्वी खुराना को दीजिए इजाजत. कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड.
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.
पर तू जो खड़ा है दया